आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सिंधुजा आचार्य है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की इंग्लिश। बच्चों, आज हम आपके चैप्टर नंबर 6 द डोरवे टू द वर्ल्ड की एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी सॉल्व करने से पहले मैं आपको पूरा चैप्टर एक बार समराइज कर देती हूँ आपके लिए। इस चैप्टर में अभय, जिसे कंप्यूटर पे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है, वो घंटों घंटों तक बिना अपनी सीट से उठे कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। जब उसके पेरेंट्स उसे कहते थे कि बाहर जाकर नॉर्मल लाइफ में इन्वॉल्व हो, तो वो यही जवाब देता था कि यह कंप्यूटर ही मेरा बाकी की दुनिया में प्रवेश मार्ग है और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसमें कितना कुछ है। इसी तरह वो दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। उसे कंप्यूटर पर जो गेम खेलना पसंद थे, उनमें से जो सबसे ज़्यादा उसे पसंद था वो एक गेम था जिसमें उसे अलग अलग लेवल पर रैट्स यानी चूहे कलेक्ट करने होते थे। वो इस गेम का एक्सपर्ट था, लेकिन वो फिर भी उस गेम्स की हायर लेवल्स पे यानी ऊंचे स्तर पर जाने की इच्छा रखता था। इसी उद्देश्य से वो कंटिन्यू वो गेम खेलता रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से घर आता है तो सब कुछ बदल जाता है। वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है अपने कंप्यूटर ऑन करने के लिए, तो वो देखता है कि उसके कमरे में दर्जनों सैकड़ों हजारों चूहे, छोटे छोटे चूहे ही चूहे हैं। वो ये सब देखकर एकदम चौंक जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है। उसे बिलीव ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो अपने पेरेंट्स को बुलाता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। फिर उसके पेरेंट्स जब आते हैं और यह सब देखते हैं, तो वह भी शॉक्ड रह जाते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। वो अभय से पूछते हैं कि बेटा यह चल क्या रहा है। अब अभय के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो उसके पेरेंट्स अभय पे चूहों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि अभय, अब इन चूहों की देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। अभय को यह चीज़ पहले तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो उनके साथ रहने लगता है तो धीरे धीरे उसे उनकी खुराक, उनकी आदतें और उन्हें किन किन तरीकों से खाना खिलाना है इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होने लगता है और वो ये सारी चीज़ें पसंद भी करने लगता है। अब वो पहले उसने कई बार ट्राई किया कि वो जो चूहे हैं वो उसके कमरे से बाहर चले जाएं, लेकिन वो नहीं जाते थे। अब उसे उन चूहों के साथ रहना अच्छा लगने लगा। वो उनके साथ गेम्स खेलता, उन्हें अपने कर्तव्य दिखाता और उनके नाम से बुलाता था। अब अभय उन चूहों के बारे में अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से भी बात करता था। अब वो अपना खाली टाइम कंप्यूटर में बिताने की जगह उन चूहों के साथ ही बिताता था। एक दिन जब वो घर वापस आया स्कूल से, तो वो देखता है कि सारे चूहे मिसिंग हैं। अब उसके पेरेंट्स को यह चिंता होने लगी कि कहीं ये वापस वीडियो गेम्स में बिजी तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभय बिल्कुल नहीं रोया। उसने अपनी गुल्लक को खाली किया और एक पालतू जानवरों की दुकान पे गया। वहाँ से उसने एक पैरिकिट्स खरीदा। पैरिकिट्स, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, पैरेट फैमिली का ही एक छोटा सा बर्ड होता है। तो उसने एक पेयर ऑफ पैरिकिट्स खरीदा, यानी एक पैरिकिट्स का जोड़ा खरीदा और उनकी देखभाल करने लगा। वो अब भी अपने पैरिकिट्स को बहुत प्यार से रखता था और अब वो कंप्यूटर पे जानवरों पक्षियों और नेचर के बारे में नई नई बात जानने के लिए उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करता था। अब अगर कोई उससे उसकी हॉबी के बारे में पूछता, तो वो उन्हीं पैराकेट्स का नाम लेकर कहता कि यही मेरे लिए दुनिया का प्रवेश द्वार है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इनमें कितना कुछ है। तो बच्चों, यही थी आपकी द डोरवे टू द वर्ल्ड की समरी। अब हम इसकी एक्टिविटी नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, उनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। जैसे जो आपको जन्म देती है, तो आपको जन्म कौन देती है? माँ। तो आपने उसके लिए लिखा माँ। तो उसी तरह आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं जिनको देखकर आपको उनके लिए जो सुटेबल एक वर्ड है, जो एक वर्ड में पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब बता देते हैं, वो वर्ड्स लिखने हैं। तो पहला है मदर एंड फादर। बच्चों, ऐसा कौन सा वर्ड है जो मदर और फादर दोनों के बारे में बताता हो, जिसका मतलब मदर और फादर दोनों हो? बच्चों वो वर्ड है पेरेंट्स। आपने पूरे चैप्टर में इस वर्ड का जो यूज है कई बार देखा होगा कि अभय पेरेंट्स, अभय के पेरेंट मदर और फादर दोनों, तो मदर और फादर दोनों के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? पेरेंट्स। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन विच अभय प्लेड गेम्स। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिस पर अभय गेम्स खेलता था। अब अभय कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे गेम खेलता था? अभय कंप्यूटर पर गेम खेलता था। तो यहां पे इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए राइट वर्ड कौन सा है? कंप्यूटर। नेक्स्ट, अ पॉट इन विच मनी इज केप्ट एज सेविंग्स। एक ऐसा पॉट या बर्तन कह सकते हैं हम जिसे, वो जिसमें पैसे को सेव किया जाता है, जिसमें हमारी जो भी बचत होती है हम उसे रखते हैं। तो बच्चों हिंदी में हम उस वर्ड को क्या बोलते हैं? हिंदी में हम उस वर्ड को बोलते हैं गुल्लक। हम हमारे पैसे गुल्लक में ही सेव करते हैं। और गुल्लक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुल्लक को इंग्लिश में बोलते हैं पिगी बैंक। तो राइट वर्ड पिगी बैंक। नेक्स्ट, अ काइंड ऑफ अ पैरट। जो तोते होते हैं उन्हीं का एक प्रकार। अब वो कौन सा बर्ड है बच्चों जो अभय एज अ पेट लाता है? वो है पैराकिट्स। और पैराकिट्स क्या होते हैं? जो पैरट होते हैं उन्हीं का एक प्रकार होते हैं, उन्हीं की टाइप होते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और कॉलम बी में उनके मीनिंग्स दे रखे हैं, तो आपको वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। पहला वर्ड इनकरेज। बच्चों इनकरेज करना यानी किसी को सपोर्ट करना, उसे विश्वास दिलाना कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या तुम ऐसा कर सकते हो। जब हम किसी को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ तुम ये कर पाओगे, तो उसे ही कहते हैं इनकरेज करना। तो बच्चों कॉलम बी में कौन से मीनिंग इनकरेज को एक्सप्रेस करते हैं? कॉलम बी में जो मीनिंग इनकरेज से मैच होगा वो है गिव कॉन्फिडेंस। तो इनकरेज का राइट मैच गिव कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वर्ड है पर्पस। बच्चों पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य यानी आप जो भी काम करते हो उसका रीजन क्या है, आप वो काम क्यों कर रहे हो, या किसी भी काम को करने का आपका जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हो उसे भी पर्पस कहा जाता है। तो बच्चों कॉलम बी में पर्पस का राइट मैच कहाँ मिलेगा? पर्पस का राइट मैच है एम, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी यानी कर्तव्य की भावना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का राइट मैच आपको कहाँ मिलेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी का राइट मैच है सेंस ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट, स्ट्रेंज। अब स्ट्रेंज का मतलब होता है बच्चों विचित्र, जो बहुत अलग हो। तो इसका राइट मैच कॉलम बी में अनयूजुअल। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको हर सेंटेंस में जो ब्लैंक है उसमें करेक्ट वर्ड को फिल करना है। पहला वर्ड है कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, एकत्रित करना। नेक्स्ट वर्ड है डाइट। बच्चों डाइट का मतलब होता है आपका खाना। थर्ड, एम्प्टी यानी खाली। एक्सपर्ट यानी निपुण, जो किसी काम में एक्सपर्ट हो चुका हो या जो कोई भी काम बहुत अच्छी तरीके से कर सके। आपका पहला सेंटेंस है अभय वॉज एन ब्लैंक इन प्लेइंग वीडियो गेम्स। अभय वीडियो गेम्स खेलने में था। अब अभय वीडियो गेम्स खेलने में क्या था? अभय वीडियो गेम्स खेलने में एक्सपर्ट था, तो यहाँ करेक्ट वर्ड है एक्सपर्ट। अभय वॉज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग वीडियो गेम्स। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड रमेश टू ब्लैंक हिज बुक्स फ्रॉम हिज डेस्क। टीचर ने रमेश को उसकी किताबें डेस्क पे से करने को कहा। अब बच्चों क्या कहा होगा टीचर ने? यहां करेक्ट वर्ड होगा कलेक्ट। द टीचर आस्क्ड रमेश टू कलेक्ट हिज बुक फ्रॉम हिज डेस्क। टीचर ने रमेश को उसकी किताबें डेस्क पे से इकट्ठा करने को कहा। नेक्स्ट, वी कैन हियर एन इको ऑफ योर वॉइस इन एन ब्लैंक हॉल। हम हमारी आवाज की इको हॉल में सुन सकते हैं। अब कौन से हॉल में हम हमारे आवाज की इको, जो हमारी आवाज गूंजती है, उसको सुन पाते हैं? हम एक खाली हॉल में ही हमारी आवाज को इको करते हुए सुन पाएंगे। तो यहाँ राइट मैच या यहाँ करेक्ट वर्ड क्या है? यहाँ करेक्ट वर्ड है एम्प्टी। वी कैन हियर एन इको ऑफ आवर वॉइस इन एन एम्प्टी हॉल। हमें खाली हॉल में हमारी आवाज को गूंजते हुए सुन सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर ब्लैंक इज द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। सही एक अच्छे स्वास्थ्य का राज है। अब बच्चों यहाँ पे कौन सा वर्ड करेक्ट रहेगा? इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड है जो एक अच्छे स्वास्थ्य का सीक्रेट हो सकता है? यहाँ जो वर्ड करेक्ट है वो है डाइट। प्रॉपर डाइट इज द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। सही खान पान अच्छे स्वास्थ्य का सीक्रेट है। अब एक्टिविटी नंबर थर्ड, स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको दो सेंटेंसेस दे रखे हैं, उन सेंटेंसेस में एक एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन दी हुई है। आपको उन अंडरलाइन वर्ड को सही से स्टडी करना है। तो मैं आपको पहले सेंटेंसेस पढ़ के सुनाती हूँ। ही विश्ड टू गो फॉर हायर लेवल्स, इट इज द हाईएस्ट टावर इन द सिटी। ये आपके दो सेंटेंस हैं। अब बच्चों इन दोनों वर्ड्स को आप देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि दोनों वर्ड में हाई सेम है, लेकिन एक हाई के पीछे ER लगा हुआ है और एक हाई के पीछे EST लगा हुआ है। अब बच्चों ये ऐसा क्यों किया हुआ है, इसे जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। द अंडरलाइंड वर्ड हायर इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स persons etc. द वर्ड हाईएस्ट इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू थिंग्स person. इट इज मेड बाय ER टू हाई, इट इज मेड बाय EST टू हाई। अब बच्चों जो पहला अंडरलाइंड वर्ड है हायर, वो दो चीजों के बीच में कंपेयर यानी तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जो दूसरे सेंटेंस में अंडरलाइंड वर्ड है हाईएस्ट, वो दो से ज्यादा चीजों के बीच कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बच्चों ये दोनों ही वर्ड्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन के वर्ड्स हैं। आपने एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़े होंगे, तो ये वही वर्ड्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ही हिस्सा है। और जिन बच्चों ने पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं पढ़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव का हिस्सा होते हैं। हर एडजेक्टिव के तीन फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है उसका सिंपल फॉर्म, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलना करने के लिए जो डिग्री होती है वो, और सुपरलेटिव डिग्री यानी जो सुप्रीम डिग्री होती है, सबसे टॉप पे जो डिग्री होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसके नाम से ही पता चलता है कि वो दो चीज़ों के बीच कंपेयर करने के लिए या तुलना करने के लिए यूज़ की जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री, जो उसके नाम से ही बताया जाता है कि सुपर यानी सबसे ऊपर की डिग्री होती है, तो आप जब पहले सेंटेंस में देखेंगे तो ही विश्ड टू गो फॉर हायर लेवल्स, यानी वो और ऊंचे लेवल्स पर जाना चाहता था या जाने की इच्छा रखता था। यानी वो उसकी पिछली लेवल्स और वो जिस लेवल पर है उसके बीच कंपेयर कर रहा है कि वो उन दोनों लेवल्स से और ऊपर जाना चाहता है। और सेकंड सेंटेंस, इट इज द हाईएस्ट टावर इन द सिटी, ये टावर सिटी का सबसे ऊंचा टावर है, यानी यहाँ पे सुपर हो गया, यहाँ पे सुप्रीम हो गया। अब बच्चों, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी एडजेक्टिव के पीछे ईआर लगाने से बनती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव के पीछे ईएसटी लगाने से बनती है। अब एक्टिविटी थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उनको देखकर जो बची हुई टेबल है उसे कंप्लीट करना है। पहला कॉस्टली, जो नॉर्मल डिग्री होती है वो, कॉस्टलियर यानी कंपैरेटिव डिग्री, और कॉस्टलीएस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों इसमें आप देखेंगे कि जो आपकी नॉर्मल डिग्री है उसमें कॉस्टली है, लास्ट में वाई है, लेकिन जब वो कंपैरेटिव डिग्री में हमने उसके पीछे ईआर लगाया तो वाई की जगह हमने क्या यूज किया, आई को। बच्चों ऐसा इसलिए होता है, जब भी किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट हो, आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट तो पता ही है, तो अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट होता है तो वाई का ओमिशन हो जाता है और उसकी जगह आ जाता है आई। तो आप देखेंगे कि जब हमने उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाया तो हमने पहले नॉर्मल डिग्री में देखा कि वाई के पहले एल है यानी कॉन्सोनेंट है, तो हमने वाई को हटाया और वहां पे आई लगाया, तो कॉस्टलियर एंड कॉस्टलीएस्ट। फिर फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट। बच्चों आपको ये जो दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनके आधार पे आपको पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। तो अब नंबर थ्री पर है हायर एंड हाईएस्ट, तो इसकी पहली डिग्री क्या होगी, हाई, एच आई जी एच। नेक्स्ट है अगली। अब बच्चों इसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को हमको बनाना है, तो बच्चों वो कैसे बनेगी, वो बनेगी अगलियर एंड अगलीएस्ट। अगलियर की स्पेलिंग रहेगी यू जी एल आई ई आर, क्योंकि बच्चों वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो वाई हट जाता है और उसकी जगह आई लग जाता है, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री अगलियर यू जी एल आई ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री अगलीएस्ट यू जी एल आई ई एस टी, और लास्ट में आपको सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है लार्जेस्ट, तो इसकी फर्स्ट डिग्री होगी लार्ज एल ए आर जी ई, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी एल ए आर जी ई आर। जब बच्चों किसी वर्ड में ऑलरेडी लास्ट में ई दिया हुआ है तो आप सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में आर लगाएंगे और सुपरलेटिव में एस टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल डिग्री ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स इन द बॉक्स। आपको चार एडजेक्टिव दे रखे हैं, आपको उनकी सुटेबिलिटी के हिसाब से फिलिंग द ब्लैंक्स में, सॉरी ब्लैंक्स में फिल करने हैं। अब आपको उनकी डिग्री चेंज करनी है, तो पहला जो सेंटेंस है वो है फार्मर वर्क हार्ड एवरी ईयर एंड होप फॉर ब्लैंक क्रॉप्स। अब बच्चों जो चार एडजेक्टिव हैं तो सबसे पहले हमें सही एडजेक्टिव पिक करना होगा और फिर उसकी डिग्री चेंज करनी होगी। तो बच्चों जब फार्मर्स, जब किसान साल भर मेहनत करता है तो वो कैसे क्रॉप्स चाहेगा, उसकी उम्मीद कैसे क्रॉप्स की, कैसी फसल की रहेगी। तो बच्चों यहाँ पर हम पिछले साल की जो क्रॉप्स है उनसे कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर गुड की कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। अब गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वो होती है बेटर। BETTER. Farmers work hard every year and hope for better crops. Next, Aishwarya is blank then Rani. अब ऐश्वर्या रानी से है। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले सुटेबल एडजेक्टिव पिक करना होगा हमें, वो क्या है, टॉल, बिग या लॉन्ग। बच्चों यहाँ पे जो सुटेबल एडजेक्टिव है वो है टॉल। अब टॉल का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो होता है टॉलर, यानी टॉल की स्पेलिंग के पीछे हम लगा देंगे ER। तो ऐश्वर्या इज टॉलर देन रानी, ऐश्वर्या रानी से लंबी। नेक्स्ट, अ फुटबॉल इज ब्लैंक देन अ क्रिकेट बॉल, जो फुटबॉल होती है वो क्रिकेट बॉल से होती है। अब फुटबॉल बिग होती है या लॉन्ग होती है क्रिकेट बॉल से? फुटबॉल बड़ी होती है, बिग होती है। अब यहां हम एडजेक्टिव का जो कंपैरेटिव डिग्री है बिगर, उसको यूज करेंगे। बिगर की स्पेलिंग रहेगी BIGGER। तो अ फुटबॉल इज बिगर देन क्रिकेट, देन अ क्रिकेट बॉल। और लास्ट, द रिवर गंगा इज ब्लैंक देन द रिवर यमुना, जो गंगा नदी है वो यमुना नदी से है। अब यहां एडजेक्टिव रहेगा लॉन्ग और उसका कंपैरेटिव डिग्री, अब उसका कंपैरेटिव डिग्री आपको खुद को बनाना है और ये जो लास्ट वाला फिलिंग द ब्लैंक से आपको खुद को सॉल्व करना है। तो बच्चों ये थे डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव्स के। अगर आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा डिग्री ऑफ कंपैरिजन की एक्सरसाइजेस कीजिए। हाँ, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कुछ रूल्स होते हैं जो आप आपकी टीचर से पूछ सकते हैं, और आप जितने ज़्यादा डिग्री ऑफ कंपैरिजन की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे आपको उतनी आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये लास्ट वाला फिलिंग द ब्लैंक्स आप खुद करेंगे, क्योंकि हमने एग्जांपल्स भी देखे हैं और तीन फिलिंग द ब्लैंक्स हमने खुद ने सॉल्व किए हैं, तो आई होप कि आप फोर्थ वाला खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्टिविटी नंबर 4, रीड द गिवन स्टोरी अलाउड बिफोर द क्लास। आपको एक स्टोरी दी हुई है जो आपको पूरी क्लास में पढ़कर सुनानी है, तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। वंस टू मैन हैड अ हीटेड आर्गुमेंट विद ईच अदर, हु कुड कट मोर फायरवुड फ्रॉम मॉर्निंग टिल 4 इन द आफ्टरनून। एक बार दो आदमियों के बीच जमकर बहस हुई कि कौन सुबह से लेकर तो दिन की 4 बजे तक ज्यादा फायरवुड या जलाने के लिए लकड़ियां काट सकता है। They decided to find out. उन्होंने ये पता लगाने का निश्चय किया। The next morning, the two men started their work. अगली ही सुबह दोनों आदमियों ने अपना काम शुरू कर दिया। At first, they worked at the same speed. शुरुआत में दोनों ने एक ही स्पीड से या एक ही गति से काम किया। But in an hour, one of them found that the other had stopped cutting. लेकिन एक घंटे में पहला वाला आदमी यह देखता है कि दूसरे वाले ने काटना बंद कर दिया है। Realizing that this was his chance, the first man started cutting wood with double effort. पहले वाले आदमी को यह लगा कि उसके पास यही मौका है, तो उसने और तेजी से लकड़ी काटना शुरू कर दिया। 10 minutes passed and he heard the second man working again. 10 ही मिनट हुए थे कि उसने सुना कि अगला जो आदमी था वो भी काम करने लगा। Then the first man found that his opponent had stopped again. फिर थोड़ी देर बाद दूसरे आदमी ने काम करना फिर बंद कर दिया। The first man started working, sensing the smell of victory. पहले आदमी ने काम जारी रखा और अब उसे लग रहा था कि वो अब जीत जाएगा। This lasted for all day long. ऐसा पूरे दिन चलता रहा। Every hour, one of them stopped for 10 minutes and the other continued to work. हर घंटे में जो पहला था, मतलब जो एक था, वो 10 मिनट के लिए रुकता जबकि दूसरा अपना काम जारी रखता। When the time expired, the first man who worked without stopping was absolutely sure that he would win the prize. जब टाइम खत्म हो गया तब जो पहला आदमी जिसने काम रोका नहीं था उसे यह विश्वास था मन में कि हाँ अब प्राइज तो मैं ही जीतूंगा। बट ही वॉज सरप्राइज टू नो दैट ही वॉज मिस्टेकन। लेकिन जब उसे पता चला कि नहीं वो गलती कर रहा है तो वो चौंक गया। हाउ डिड दैट हैपन ही आस्क्ड हिज पार्टनर। ये कैसे हुआ उसने अपने पार्टनर से पूछा। एवरी आवर आई फाउंड दैट यू स्टॉप्ड वर्किंग फॉर 10 मिनट्स। हाउ कुड यू कट मोर फायरवुड देन मी, इट्स इम्पॉसिबल। मैंने हर घंटे में देखा था कि तुमने 10 मिनट के लिए काम बंद कर दिया था, फिर तुमने मुझसे ज्यादा फायरवुड कैसे काट ली, तुमने मुझसे ज्यादा लकड़ियां कैसे काट ली, ये तो नामुमकिन है। इट्स वेरी सिंपल इन फैक्ट आंसर द सेकेंड मैन। एवरी आवर आई स्टॉप द वर्किंग फॉर 10 मिनट्स। वेन यू आर कटिंग आई वॉज शार्पनिंग माई एक्स। यह तो बहुत ही सिंपल है वैसे, जो सेकंड आदमी था उसने जवाब दिया। हर घंटे जब मैं 10 मिनट के लिए काम बंद कर देता और तुम काम जारी रखते तब मैं अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसकी धार तेज कर रहा था। तो बच्चों इससे पता चलता है कि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। जो दूसरा आदमी था वो रुक रहा था हर घंटे में 10 मिनट के लिए, लेकिन वो 10 मिनट इसलिए रुकता था ताकि वो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर सके। तो बच्चों अब इसके दो क्वेश्चंस हैं। आफ्टर रीडिंग आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। अब आपने पूरा पैसेज पढ़ा है तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हु वॉज स्मार्टर, द फर्स्ट मैन और द सेकेंड? आपके हिसाब से कौन ज्यादा स्मार्ट है, पहला आदमी या दूसरा? एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Who won the prize and why? Prize किसे मिला और क्यों? तो बच्चों आपने पूरा पैसेज पढ़ा है तो अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद सोचिए और जवाब दीजिएगा जब आपकी टीचर आपसे ये पूछे। अब एक्टिविटी नंबर 5। यू हैव अ पेट डॉग नेम्ड शेरू। योर फ्रेंड राहुल और रीता डेली कम्स टू प्ले विथ शेरू इन द इवनिंग। But the previous day, Rahul or Rita was not only shocked by Sheru's behavior, but also received quite a few scratches and small cuts, either caused by the dog or resulting from his or her rolling on the ground. He or she therefore decided to go to the veterinary doctor the next day. Now, Rahul or Rita is really frightened by Sheru's behavior and thinks something might be seriously wrong with him. There is a canine club in his town, of which his or her father is a member. They provide good veterinary service. Now find out with the vet's help how Sheru needs to be examined. Write a paragraph with the help of the given words. आपके पास एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम शेरू है। आपके फ्रेंड राहुल या रीता डेली शाम को उसके साथ खेलने आते हैं, लेकिन कल जब राहुल या रीता उसके साथ खेलने आए तो वो सिर्फ उसके बिहेवियर से शॉक ही नहीं हुए बल्कि उसके इस बिहेवियर की वजह से उसे कुछ कट्स और स्क्रैचेस भी आए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगले दिन वो उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। राहुल या रीता शेरू के इस बिहेवियर से बहुत घबरा गए और उन्होंने ये सोचा कि शायद शेरू के साथ कुछ बहुत ही गंभीर हुआ है, कुछ गलत हुआ है उसके साथ। टाउन में एक केनाइन क्लब भी है जिसके मेंबर जो उनके फादर हैं वो उस केनाइन क्लब के मेंबर हैं। केनाइन क्लब स्पेशली जानवरों के लिए जो क्लब बनाए जाते हैं वो होता है। तो वो जो उनके टाउन में जो केनाइन क्लब है वो बहुत अच्छी वेटरिनरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी जानवरों के इलाज के लिए बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब आपको वेट उनकी हेल्प से ये पता लगाना है कि कैसे शेरू को एग्जामिन किया जाना है, कैसे शेरू को एग्जामिन किए जाने की जरूरत है, और उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। आपकी हेल्प के लिए कुछ कीवर्ड्स आपको दे रखे हैं, तो आपको उनकी हेल्प से ये पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों, आप इस जो इतने सारे आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं उनकी हेल्प से एक पैराग्राफ जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप आपके टीचर्स और आपके फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, द डोरवे टू द वर्ल्ड। तो बच्चों, अब हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, तो आप बस इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा, एक्टिविटीज सॉल्व कीजिएगा, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसे आप अगर समझना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स आप समझना चाहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन को और अच्छी तरीके से, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिएगा। तो इसी के साथ गुड लक फॉर योर स्टडीज।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।